समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं शैफाली सिंह। नमस्कार शैफाली।
नमस्कार अलका, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। सो डियर लिसनर्स, जैसा कि अलका ने हमें बताया, आज है टीचर्स डे। टुडे इज 5th ऑफ सितंबर, व्हिच इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल टीचर्स डे। एंड अलका, हम बता देते हैं अपने लिसनर्स को दैट इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो लिसनर्स, वी नो टीचर्स टीच, बट दे डोंट ओनली teach us the syllabus or the textbook, but also inspire us with their life stories. They step up to challenges, be it the offline mode or lately the online mode. So we are deeply grateful to the teachers, because teachers, you are the change makers.
बिल्कुल सैफाली, और कहा भी जाता है कि वैसे बच्चे का जो प्रथम शिक्षक है वो माँ होती है, और माँ जितनी सशक्त होगी बच्चा उतना सशक्त होगा। और ये हमारे टीचर्स ही होते हैं, हमारे गुरु ही होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में, अगर बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलता है तो आप निश्चित रूप से संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं और आपका डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है।
यस अलका, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू, एंड ऑन दैट नोट वंस अगेन विशिंग एवरीबडी अ हैप्पी टीचर्स डे। एंड नाउ वी शुल स्टार्ट विद अ प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is 5th of September. So Alka, let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi, who is on a visit to Singapore, is holding talks with his Singaporean counterpart Lawrence Wong. During the meeting, both the leaders will review the progress of the India-Singapore strategic partnership and exchange views on regional and global issues of mutual interest. Earlier, Prime Minister Modi was accorded ceremonial welcome on his arrival at Parliament House of Singapore.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ ऐसे विशिष्ट शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 50 शिक्षकों का चयन किया है। ये चयन पारदर्शी और ऑनलाइन तीन चरणों, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। चयनित 50 शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों से हैं। उच्च शिक्षा विभाग के 16 शिक्षकों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रूपये का नकद पुरस्कार और 1 रजत पदक दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आज शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय में एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अमृत उद्यान में प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक एक मुफ्त शटल सेवा चलाई जाएगी। अमृत उद्यान पिछले महीने की 16 तारीख से जनता के लिए खोला गया था और ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में भ्रमण का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। सोमवार को ये बंद रहेगा। शिक्षक दिवस के ही अवसर पर आज लखनऊ में देश के सबसे बड़े काव्य महोत्सव कवि कुंभ का आयोजन हो रहा है। ये आगामी प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ का भी अवसर है। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित ये तीसरा कवि कुंभ है। पहले दो आयोजन हस्तिनापुर में हुए थे। शिक्षक दिवस पर शुरू होने वाले 3 दिवसीय काव्य महोत्सव में राज्य और देश भर से लगभग 340 प्रमुख कवि और कवित्रियां भाग लेंगी।
The center has asked all states and union territories to provide an action taken report on safety and security measures for doctors and healthcare workers in all medical institutions before September 10th. Union Health Secretary Apoorva Chandra has written a letter to all chief secretaries and directors general of police in this regard. Each territory and district has been asked to identify hospitals with high footfall and consider them as high priority establishments for security improvements. They have been instructed to conduct security audits in consultation with local health and police authorities to assess and improve security measures. States have also been urged to ensure the installation and proper functioning of CCTV cameras, particularly in high-risk areas. They have also been asked for robust background checks for all outsourced personnel and contractual workers employed in the hospitals.
A Kendriya Antar Mantralay Dal aaj आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर और अन्य क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन अवर सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में ये दल बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण और पीड़ितों से बात करेगा। केंद्रीय दल में शामिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के सलाहकार कर्नल केपी सिंह, केंद्रीय जल आयोग के निदेशक सिद्धार्थ मित्रा, आयोग के हैदराबाद के अधिकारी रमेश कुमार, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई के निदेशक आर गिरिधर और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 10वीं बटालियन के कमांडेंट वीवीएन प्रसन्ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
Union Textile Minister Giriraj Singh has said that India's textile industry is expected to grow to $350 billion by 2030. He said it will add 3.5 crore jobs in the country. Addressing a curtain raiser event of Bharat Tex 2025 in New Delhi, Mr. Singh expressed hope of India being recognized by its Bharat brand and green sustainable textile products at the world stage. He asserted that the Union Government's PLI scheme for textiles will enable the apparel industry to boost production and promote their branding. Mr. Singh informed that the Global Textiles Expo, Bharat Tex 2025, will be held from 14th to 17th February next year at Bharat Mandapam in New Delhi and at the India Expo Centre and Mart in Greater Noida.
Bharatiya Janata Party ne Haryana Vidhan Sabha chunav ke liye 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कल शाम जारी की गई सूची के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से और पूर्व मंत्री अनिल विज अम्बाला कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगे। असीम गोयल अम्बाला सिटी से, कंवर पाल गुर्जर जगाधरी से और घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भाजपा ने राम कुमार गौतम को सफीदो विधानसभा सीट से, देवेंद्र सिंह बबली को टोहाना से और कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। श्रीमती श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दिया गया है। वे हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। पूर्व भाजपा सांसद सुनील दुग्गल रतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। सूची के अनुसार भाजपा ने कुल 8 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है।
India Meteorological Department, IMD, has forecast widespread light to moderate rainfall over west and central India during the week. It has forecast isolated heavy rainfall over Chhattisgarh during the next 6 days and in Saurashtra and Kutch till tomorrow, while in Konkan and Goa and Gujarat region till 8th of this month. IMD added that isolated very heavy rainfall is also expected over coastal Andhra Pradesh and Yanam, Telangana today. Fairly widespread light to moderate rainfall is also likely over northeast India, Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim during the week. It added that scattered to fairly widespread light to moderate rainfall is also expected over Gangetic, West Bengal, Bihar, Jharkhand and Odisha during the week. Isolated heavy rainfall is also very likely over Uttarakhand, Rajasthan till 8th of this month and West Uttar Pradesh today. And in sports news, at the Paris Paralympics, it was a memorable day for India yesterday as it clinched 4 medals, with 2 of them being gold. Harvinder Singh made history by becoming the first ever Indian archer to win a Paralympic gold medal. He achieved the glory in the men's individual recurve open event last night. After this, Dharambir smashed the Asian record with a throw of 34.92 meters to claim the gold in the men's club throw F51 final. Pranav Surma claimed the silver medal with his best throw of 34.59 meters in the same event. Earlier in the day, world champion Sachin Sarjerao Khiladi had clinched a silver in men's shot put F46 event. With the 4 medals in the day, India's tally has risen to 24, including 5 gold, 9 silver and 10 bronze. India has moved up to the 13th place in the standings.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं शेफाली।
यस अलका, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। The State Selection Committee has initiated the admission process for PG degree and diploma courses in medicine and dentistry for 2024-25 academic year. The applications were available on the state government websites. The state surrenders 50% of seats in government colleges to the All India quota. The committee will conduct counseling for admission to government quota seats in state-run medical colleges. All seats in self-financing medical colleges affiliated to the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University can be accessed. The deadline for submitting applications is September 15. The committee said it will declare the dates for the release of the rank list, counseling, and the data for the commencement of courses later. In another news, 4 youths died when a car in which they were travelling rammed into a truck stationed nearby on the outskirts of Chennai on Wednesday. The accident occurred at the East Coast Road when the car travelling from Mamallapuram towards Chennai at a high speed rammed the rear of the stationary truck parked on the roadside due to malfunction. The Traffic Investigation Wing and Fire and Rescue Services personnel rushed to the spot. Case has been filed against the truck driver for negligence. And now news from Bengaluru. Startup Karnataka, which is an initiative of Government of Karnataka, has announced a strategic partnership with CII Green Entrepreneurship Council to encourage clean tech startups in Karnataka. CII Green Entrepreneurship is set up by CII Sorabji Green Business Centre. The partnership is set to strengthen the clean tech ecosystem in Karnataka to attract startups, investors and industry stakeholders. Under the program, applications will be called from startups with ready-to-go-to-market products that offer solutions in energy efficiency and conservation, renewable energy, water monitoring and conservation, waste management, digitization and green and sustainable materials. The Karnataka Minister for ITBT Priyank Kharge has informed that Karnataka Clean Tech Startup Accelerator will mentor, fund and fulfill resources to the clean technology startups in the state. CII Green Entrepreneurship will extend 6 months training to these startups. And now, dear listeners, news from Hyderabad. Hyderabad is hosting a 2-day Global Artificial Intelligence Summit 2024 themed Making AI Work for Everyone Today and Tomorrow. Organized by the state government, the summit will be formally inaugurated by Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy later this morning at the Hyderabad International Convention Centre. Aimed at fostering discussions on various aspects of AI, the summit is expected to amplify the state's ambition to become a global innovation hub. The summit will feature a series of parallel tracks, including a central plenary and specialized sessions that delve into AI advancements, practical applications, and future opportunities. The Chief Minister will be joined by Information Technology and Industries Minister D. Sridhar Babu. The event is expected to draw over 2,000 delegates from across the world. And in another news, the Telangana government has stepped up relief measures at erstwhile Khammam district and other rain-affected areas, while the Met officials issued warning of heavy rain till 9th of this month. Some parts of Kottagudem, Mulugu and Rangareddy districts recorded heavy rain since last night. Venkatapuram of Mulugu district recorded 108 millimetres of rainfall till 6 a.m. this morning. Meanwhile, the authorities issued the first warning for floods at the temple town of Bhadrachalam as the water level in River Godavari reached 43 feet. District Collector Jiteshvi Patil asked the authorities to shift the residents of vulnerable localities at Bhadrachalam to relief camps. The authorities, including in Hyderabad, have issued guidelines for the public to follow till 9th of this month due to expected heavy rainfall. And now, dear listeners, for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to Alka.
दिल्ली की बात करें शेफाली तो दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बढ़ाने की घोषणा की है. एक प्रेस वार्ता में कल श्री गहलोत ने बताया कि इस कॉरिडोर की पहली लंबाई 22.91 किलोमीटर थी जो अब बढ़कर 23.73 किलोमीटर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर आगे हरियाणा के कुंडली और नाथोपुर गांव तक भी जाएगी और दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के विस्तार कार्य के कारण मेट्रो की येलो लाइन पर कल रात 10 बजे से समयपुर बादली और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो रेल एक ही रेलवे ट्रैक पर परिचालित हो रही है और इन दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच रेल परिचालन का यह परिवर्तन रोजाना मेट्रो सेवा शुरू होने से सुबह 7 बजे तक भी जारी रहेगा. दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने बताया कि रेल परिचालन में ये बदलाव अगले आदेश तक लागू रहेगा. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कल नई दिल्ली में खेल उत्सव 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया. इस अवसर पर उन्होंने सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी. श्री जाजू ने आशा व्यक्त की कि मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के उत्सव भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे. खेल उत्सव 2024 का आयोजन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 27 से 30 अगस्त के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया था. इस उत्सव के दौरान बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं. बात कर ले मुंबई की तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 610वीं बैठक कल मुंबई में आयोजित की गई. बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्यों की समीक्षा की. बैठक में स्थानीय बोर्डों के कामकाज और चुनिंदा केंद्रीय विभागों की गतिविधियों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों पर भी गहन चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की और जिसमें डिप्टी गवर्नर डॉ माइकल देवव्रत पात्रा, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रविशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कल पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की शॉटपुट F46 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सचिन सर्जेराव को बधाई दी है. एक्स पर एक संदेश में श्री पवार ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के सचिन सर्जेराव की असाधारण प्रदर्शन की सराहना की और 34 वर्षीय खिलाड़ी ने 16.32 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड दूरी के साथ रजत पदक जीता था. सचिन के बाएं हाथ में चोट है जो बचपन में साइकिल दुर्घटना के कारण लगी थी. और वहीं गणेश उत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के लिए कोंकण जाने वाले निजी वाहनों के लिए टोल टैक्स न लेने की घोषणा की है. आज से 9 सितंबर तक मुंबई बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग, मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कोंकण की ओर जाने वाली सभी अन्य सड़कों पर टोल मुक्त यात्रा होगी. श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव गणेश दर्शन नामक एक विशेष पास जारी किया जाएगा जिसमें वाहन का पंजीकरण नंबर, मालिक का नाम और अन्य विवरण अंकित हैं. बात कर लें कोलकाता की तो पश्चिम बंगाल सरकार 15 साल पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगी. राज्य परिवहन विभाग ने बताया कि वो 20 साल पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अवधि बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी राज्य सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी करेंगे. आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और शेफाली के साथ और अब जान लेते हैं मौसम का हाल. शेफाली, दिल्ली में तो मौसम बहुत ही खुशनुमा है, दो चार दिनों से
बिल्कुल
रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन कभी कभी गर्मी भी हो जा रही है।
ट्रू।
तो दिल्ली की बात करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई की बात करें तो बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है, न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और जॉय सिटी कोलकाता की बात करें तो यहां बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है, न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बाकी का हाल आप बताएं।
जी अलका, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 27 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई।
जी, on this day in the year 1612, East India Company's navy was established.
और अगर 1666 की बात करें तो लंदन में लगी भीषण आग में 13,200 घर क्षतिग्रस्त हुए थे और 8 लोगों की उसमें मौत हुई थी।
On this day in the year 1793, Mir Qasim lost to Britishers near Rajmahal in Battle of Udainala. Also in this year, French Revolution, the Reign of Terror began.
और 1798 की बात करें तो फ्रांस में अनिवार्य सैन्य सेवा कानून प्रभाव में आया था। 1839 की बात करें तो चीन में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ था आज ही के दिन, और 1914 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस के बीच लंदन समझौता हुआ था।
एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1962 डॉक्टर राधा कृष्णन्स बर्थडे वाज डिक्लेयर्ड एज टीचर्स डे।
और बिल्कुल, और 1991 की बात करें तो नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे।
And in the year 1998, Trishul and Akash missiles were test-fired from Chandipur. And in the year 2000, Tuvalu, a group of 9 coral islands in the West Central Pacific with a population of about 10,000, became the 189th member of the United Nations.
बिल्कुल, और अब बात कर लें पुण्यतिथि, जयंती और जन्मदिन की। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं चिदंबरम पिल्लई को, आज इनकी जयंती है। 5 सितंबर 1872 को इनका जन्म हुआ था और ये तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक हैं। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुरल पर उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ था। बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन में चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया और लोगों को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ब्रिटिश सरकार ने चिदंबरम पिल्लई को देशद्रोही ठहराकर उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई।
जी अलका, एंड टुडे वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा, एन अल्बेनियन इंडियन कैथोलिक नन एंड द फाउंडर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। बॉर्न इन द ऑटोमन एम्पायर, शी इवेंचुअली मूव्ड टू आयरलैंड एंड फाइनली टू इंडिया, वेयर शी लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ एंड कैरीड आउट हर मिशनरी वर्क। शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन दैट वॉज इनिशियली डेडिकेटेड टू सर्विंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कैलकटा। मदर टेरेसा रिसीव्ड सेवरल ऑनर्स, इंक्लूडिंग द 1962 Ramon Magsaysay Peace Prize and the 1979 Nobel Peace Prize.
और आज हम याद कर रहे हैं शरद जोशी को। अपने समय के अनूठे व्यंग्यकार, रचनाकार शरद जोशी को आज उनकी पुण्यतिथि है। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा और कलम इतनी धारदार थी कि सीधे दिल पर दर्ज होती थी। वो भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई के चकल्लस के मंच पर 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। क्षितिज, छोटी सी बात, सांच कुआंच नहीं, गोधूली और उत्सव फिल्में लिखने वाले शरद जोशी ने 25 साल तक कविता के मंच से गद्य पाठ किया और इनकी लेखनी गागर में सागर भरने का काम करती थी। एक बार शरद जोशी ने लिखा था कि लिखना मेरे लिए जीवन जीने की तरकीब है। इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देख मैं सिर्फ यही कह पाता हूं कि चलो इतने बरस जी लिया, ये ना होता तो इसका क्या विकल्प होता। अब सोचना कठिन है, लेखन मेरा निजी उद्देश्य है। सरद जोशी के व्यंग में हास्य, गर्वाहट, मनोविनोद और चुटीलापन दिखाई देता है, जो उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय रचनाकार बनाता है। उन्होंने टेलीविजन के लिए, आपको याद हो
जी,
ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के और ये दुनिया गजब की धारावाहिक लिखे और 1990 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
And dear listeners, today is also the death anniversary of Salil Chaudhary, an Indian music director, songwriter, lyricist, writer and poet who predominantly composed for Bengali, Hindi and Malayalam films. He composed music for films in 13 languages.
बिल्कुल, और इन्हें सलील दा के नाम से भी लोग जानते हैं।
जी।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा।
सलील चौधरी को सर्वाधिक प्रयोगवादी और एवं प्रतिभाशाली संगीतकार के रूप में जाना जाता है।
And dear listeners, as mentioned earlier, today is the birth anniversary of Sarvepalli Radhakrishnan, an Indian philosopher and statesman who served as the first Vice President of India and the second President of India. He was also the fourth Vice Chancellor of Banaras Hindu University. And as we all know, when he became the President, his students asked him that we should celebrate his birthday. And he said that I would like my birthday to be celebrated as Teacher's Day. And that's how it came to be celebrated. So that's our Sarvepalli Radhakrishnan.
Bilkul.
Also, dear listeners, today is the birthday of Pankaj Tripathi, an Indian actor who predominantly works in Hindi films. He's the recipient of several awards, including a National Film Award and a Filmfare Award. So, he has worked in several films and several series, including Gangs of Wasseypur and Mirzapur, Neel Bhatte Sannata, Gunjan Saxena, and he has won several awards, for example, the National Film Award for his Best Supporting Actor in Mimi. So, let's listen to this famous dialogue from his film Gunjan Saxena.
बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती, यहां बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है दो हफ्ते पसीना बहा ले। अंजन, गेट अप।
And dear listeners, today is the birth anniversary of Damayanti Joshi, a noted renowned exponent of the Kathak dance form. She believed Kathak is the art of storytelling. She began in the 1930s dancing in Madam Menaka's troupe, which traveled to many parts of the world. She learned Kathak from Sitaram Prasad of Jaipur Gharana and became an adept dancer at a very young age, later also learning from the Lucknow Gharana. So what you are listening to in the background is from one of her performances.
आज जन्मदिन है निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संपादक विदु विनोद चोपड़ा का। उन्होंने परिंदा, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, थ्री इडियट्स जैसी फिल्में, जो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में रहीं, और सजाए मौत, जाने भी दो यारों, परिंदा, लव स्टोरी जो अभी हम सुन रहे थे, 1942 लव स्टोरी, करीब, मिशन कश्मीर जैसी कई फिल्में इन्होंने दी हैं।
बिल्कुल, ही इज आल्सो द रिसिपिएंट ऑफ सेवरल एक्लेड्स इंक्लूडिंग 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड एन एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन।
बिल्कुल, और शेफाली घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें, तो अलका सिंह और शेफाली सिंह को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।